बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आज हम अध्ययन करेंगे उस पुस्तक का जिसमें 5 बार ये दावा किया गया है कि ये नियम परमेश्वर की ओर से मूसा के द्वारा दिए गए। लेव व्यवस्था नामक इस पुस्तक में सिर्फ लेवियों को सौंपी गई सेवाओं का ही नहीं वरन तंबू में की जाने वाली आराधना विधियों का भी वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार मिले। इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले अध्ययन में मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन समाप्त कर दिया है और आज हम पुराने नियम की तीसरी पुस्तक लय व्यवस्था से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि इस पुस्तक के अध्ययन से आप निश्चित रूप से अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त करेंगे। इसलिए आप इस पुस्तक के अध्ययन में अवश्य शामिल हों और अपने मित्रों को भी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सीख सकें। मित्रों, इससे पहले कि हम वचनों में जाएं, मैं आपको इस महान पुस्तक से परिचय कराना चाहता हूँ। मैं इस पुस्तक को बाइबल की पुस्तकों में से एक महान पुस्तक समझता हूँ। कई वर्ष पूर्व डॉक्टर S.H. केलोंग ने इस पुस्तक के बारे में इस प्रकार कहा था कि वह लय व्यवस्था की पुस्तक को बाइबल की पुस्तकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक मानते हैं। मैंने सोचा कि उसकी जीव की घृष्टता के कारण उसने ऐसा कहा। तब मैंने एक महान प्रचारक के बारे में सुना कि डॉक्टर अल्बर्ट सी डोडली ने कहा कि वह बाइबल की पुस्तकों में लय व्यवस्था की पुस्तक को महान पुस्तक मानते हैं। मित्रों, कई वर्ष पूर्व मैंने इसका परीक्षण किया और मुझे नहीं मालूम था कि क्या होगा। मैंने इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ कर दिया और साथ में सीखना भी। मैं इसलिए पढ़ना चाहता था कि देखूं कि यह सचमुच महान पुस्तक है या नहीं। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि मैंने इस पुस्तक के महत्व को कम आंका था। जो भी हो, मैंने पाया कि यह पुस्तक बहुत रोमांचित करने वाली पुस्तक है। सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु अब मैं कह सकता हूँ कि लय व्यवस्था की पुस्तक बाइबल की पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि यह मेरे लिए संभव होता तो मैं इस पुस्तक के संदेश को उन लोगों के हृदय तक पहुँचाता जो लोग धर्मी होना चाहते हैं, तो सभी गलत शिक्षा और वाद खत्म हो जाते। लय व्यवस्था की पुस्तक का ज्ञान इस बात को पूरा करेगा। मित्रों, आइए हम लेखक के बारे थोड़ा सा देखें। लय व्यवस्था की पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई थी और इसका स्थान लय व्यवस्था की पुस्तक पंचतंत्र अर्थात बाइबल की 5 पुस्तकों में से एक है जो मूसा के द्वारा लिखी गई है। लय व्यवस्था की पुस्तक में इसराइल की संतान को सीनै पर्वत पर एक ध्यान में लेने योग्य समय था। यह पुस्तक एक ही भौगोलिक स्थान जो सीनै पर्वत से आरंभ और अंत भी होती है जहां पर परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दिया। आप याद करेंगे कि निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के निर्देश के अनुसार तंबू बनाने और तब परमेश्वर की महिमा का तेज तंबू को भरने के साथ समाप्त हुआ था और लय व्यवस्था इसे आज्ञा देने और आराधना की विधि देने के द्वारा आगे बढ़ाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक आराधना के लिए एक महान पुस्तक है। मित्रों, यह पुस्तक इब्रानी शब्द व इच राह के साथ आरंभ होता है या खुलता है जिसका अर्थ है और उसने बुलाया। अब परमेश्वर तंबू में आ गए हैं और वहां से बातें कर रहे हैं। अब वह सीनै पर्वत से बात नहीं कर रहे हैं, वह अपने से मिलने के लिए लोगों को तंबू में बुलाते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि कैसे आना और कैसे उसके सामने चलना है। कलीसिया अर्थात इक्लेसिया का सही अर्थ बुलाए हुए लोग हैं। हम लोग भी उन्हीं में से हैं जो बुलाए हुए लोग हैं। मित्रों, उन दिनों में परमेश्वर तंबू में से बातें करता था और वह उन्हें अपने पास आने के लिए कहता था और आज प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:27 में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, इसलिए आज इस पुस्तक में हमारे लिए एक अद्भुत संदेश होगा। आइए इसके लिखने के उद्देश्य को देखें। लय व्यवस्था आराधना की पुस्तक है और इस पुस्तक में बलिदान, पर्व, रीति रिवाज, उपासना पद्धति, आदेश, धोना, दीक्षांत समारोह, पवित्र दिन, अवलोकन, शर्तें और चेतावनियों से भरी है। ये सारी बातें आत्मिक सच्चाई को सिखाने के लिए दी गई है। पौलुस पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 11 पद में लिखते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। आगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय उसके 6 पद में कहते हैं, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है। तब रोमियों की पत्री 15 उसके 4 पद में लिखते हैं, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। मित्रों, पत्रस हमें बताते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए आत्मिक सच्चाई को रखता है। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढाड़ और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला है। और आगे इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। मित्रों, आज हमारे लिए भी लय व्यवस्था के पुस्तक में कुछ अद्भुत आदेश हैं जो मसीह के बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रकट करता है। मूसा की तीसरी पुस्तक के प्रस्तावना में टिंडल ने कहा, यद्यपि बलिदान और धर्मानुष्ठान कोई आधार या नींव नहीं हो सकते जिस पर इसे बनाया जाए, यद्यपि हम उनके साथ कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, फिर भी जब हमने एक बार मसीह को और उसके रहस्यों को पा लिया है तब हम उसके अलंकारों को ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि उसके दृष्टांत, सदृश्य और उदाहरण जो मसीह को खोलता है या बताता है और परमेश्वर की सत्यता जो मसीह में छिपी है प्रकट करता है, यहाँ तक कि उसका फुर्तीलापन जो उसे और जीवित और समझदार घोषित करता है जो संसार के सभी शब्दों से भी बढ़कर है। मित्रों, आज उपासना हमारे लिए धर्म विधि या एक विशिष्ट स्थान नहीं है। आपको याद होगा कि इसराइली लोग धर्मानुष्ठान और धर्म विधि को मान रहे थे, परंतु यीशु मसीह ने कुएं के निकट सामरी स्त्री से कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 21 से 24 पद में हम इसे पाते हैं। अब हम आगे देखते हैं मुख्य विषय। इस पुस्तक का मूल शब्द यहोवा का पवित्रता है। और आगे हम देखते हैं संदेश। इस पुस्तक का संदेश दो तरफा है। सबसे पहला है, लय व्यवस्था सिखाती है कि परमेश्वर के पास जाने का मार्ग बलिदान के द्वारा है। इस पुस्तक में शब्द प्रायश्चित 45 बार आया है। प्रायश्चित का अर्थ है ढकना। मित्रों, बैल और बकरों का लहू हमारे पापों को नहीं मिटा सकती, परंतु यह पाप को ढके रही जब तक मसीह सब पापों को लेने के लिए नहीं आ गया। इसी बात को पौलुस रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 25 पद में कहते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। मित्रों, पाप जो बीत चुका है वो पीछे पुराने नियम की पुस्तक में है। आप ध्यान दें कि परमेश्वर ने बैल और बकरों के लहू को पाप के लिए अंतिम मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु उसे उस लहू के बाहर जाने की जरूरत थी। यह पापों को ढकने के लिए एक प्रायश्चित था जब तक कि मसीह नहीं आ गया। दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर ने पुराना नियम में लोगों को उधारी में बचाया, और जब मसीह आया तो जैसा कि एक भजन बिल्कुल सटीक बात को कहता है कि यीशु मसीह ने सब कुछ चुका दिया। मित्रों, जहां तक पिछले अर्थात भूतकाल की बात है यह सही है, और जहां तक वर्तमान काल की बात है और भविष्य की बात है यह सच ही है। लय व्यवस्था की पुस्तक में एक मूल पद है जो प्रायश्चित के विषय में बताता है। यह लय व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय उसके 11 पद में मिलता है, जहां पर लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मित्रों, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, बलिदान के द्वारा, और बिना बलिदान के अर्थात लहू बहाए बिना पापों से कोई छुटकारा नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे बातों में। लय व्यवस्था सिखाती है कि परमेश्वर के साथ चलना पवित्रीकरण के द्वारा है। इस पुस्तक में शब्द पवित्रता 87 बार मिलता है। हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 26 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। मित्रों, परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन से संबंधित हर बात के लिए, भोजन, सामाजिक जीवन को चलाने के लिए कठोर नियम दिए, जिसमें उसके लोगों के जीवन के प्रतिदिन के विवरण, इन व्यवस्थाओं का एक महान आत्मिक अर्थ आज उसके लोगों के लिए है। और मैं सोचता हूं कि इसी कारण से हमें लय व्यवस्था की पुस्तक का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। आप देखें कि आज एक पापी प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सुरक्षित है। इब्रानियों की पत्री का लेखक इस प्रकार से लिखता है, इब्रानियों 9 अध्याय उसके 25 और 26 पद में, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करते हैं, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। मित्रों, वे जो यीशु मसीह के लहू द्वारा छुड़ाए गए हैं, आवश्यक है कि वे पवित्र जीवन जिएं। यदि वे आनंद प्राप्त करना और परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं, तब इब्रानियों 13 उसके 20 और 21 पद में लिखा है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। अब हम आगे देखते हैं जो इस पुस्तक के विषय में है, ध्यान से देखना। मित्रों, लय व्यवस्था की पुस्तक एक विशिष्ट पुस्तक है, जैसे कि हम इसके विषय को नया नियम के प्रकाश में देखते हैं। यह पुस्तक अधिकतर मसीहियों के लिए नीरस पुस्तक है, और इसलिए बहुत से लोग इसे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, फिर भी यह विशिष्ट पुस्तक है। पहला, 5 बलिदान जो इस पुस्तक को खोलते हैं वे स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। वे उसके व्यक्तित्व को गहराई से और उसके मृत्यु को विस्तृत रूप से दर्शाते हैं। देखें लय व्यवस्था की पुस्तक 1 से 7 में। दूसरा है, याजकों का पवित्रकरण प्रकट करता है कि हमारी सोच कितनी हल्की और अपर्याप्त है मसीही पवित्रकरण के लिए, अध्याय 8-10 में। तीसरी बात, पवित्र परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जिस भोजन का प्रबंध किया वह स्वस्थकार और आरोग्यकार था, जिसमें हमारे आत्मा के लिए भी बहुत अधिक आत्मिक भोजन है, अध्याय 11। चौथी बात, मातृत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है और मातृत्व संबंधी परमेश्वर के विचार का बहुत अच्छा उदाहरण है, अध्याय 12। पांचवा, इस पुस्तक का केंद्र जो उपासना है उसमें कोढ़ की उदग्रता और इसके इलाज को महत्व दिया गया है। उपासना हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रश्न है कि क्यों यहाँ पर कोढ़ के लिए विस्तृत भाग दिया गया है, जिन्हें वचन के आंतरिक बात को समझने के लिए अनुग्रह दिया गया है। उन्होंने पाया कि यह एक प्रकार का पाप है और यह मनुष्य के संबंध को परमेश्वर के साथ अपवित्र कर रहा है। कोढ़ी का शुद्ध होना प्रभु यीशु मसीह में मरना और पुनः जीवित हो उठने को दर्शाता है, जो सबसे अधिक असाधारण बलिदान में से है, जो दो चिड़ियों का होता है, अध्याय 13-15 में हम पाते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यदि मैं और आप इस संसार के पाप के दूषण से बचना चाहते हैं तो मुझे और आपको यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में जानना जरूरी है और इसे अपने जीवन में लागू करना है। छठवीं बात, प्रायश्चित का महान दिन एक पूर्ण रूप चित्र को दर्शाता है जो मसीह का बलिदान है, अध्याय 16। और सातवीं बात, तंबू में होम वेदी के महत्व की विशिष्टता मसीह के क्रूस के महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, इसे हम अध्याय 17 में पाते हैं। और आठवीं बात, इस पुस्तक में निर्देश के विषय में अधिक जोर दिया गया है जो परमेश्वर के लोगों के प्रतिदिन के जीवन के समय का विवरण करने जैसा प्रतीत होता है, जो यह प्रकट करता है कि परमेश्वर किस तरह निर्दिष्ट करता है कि मानव परिवार उसके साथ शामिल हो सके, अध्याय 18-22 में हम पाते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि वह आपके कार्यों में, परिवार में और आपके सामाजिक जीवन में शामिल हो। मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम सब सचेत और सावधान हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम उसे अपने जीवन से बाहर ही बंद कर दें। नवी बात, पर्वों की सूची परमेश्वर के भविष्य सूचक कार्यक्रम की कार्य सूची को सजाता है जो सब समय के लिए है, अध्याय 23। और दसवीं बात, व्यवस्था जो फलिस्तीन की भूमि में शासन कर रही या चला रही है, यह एक इतिहास के जांचकर्ता की व्याख्या को प्रस्तुत करती है और यह भविष्य की विशिष्टता में एक अंतर्दृष्टि है। मित्रों, इस पुस्तक में कई भविष्यवाणियां हैं। इसराइल राष्ट्र और वायदा का देश यहां से लेकर अनंत काल तक एक साथ गुथे हुए हैं और अंतर्ग्रंथित अर्थात बुने हुए हैं। बाइबल की पहले तीन पुस्तकों में संबंध है। हम उत्पत्ति में मनुष्य के विनाश अर्थात तबाही को देखते हैं और निर्गमन में मनुष्य के छुटकारे को देखते हैं और लय व्यवस्था में हम मनुष्य को परमेश्वर की आराधना करते हुए देखते हैं। मित्रों, हम भी निर्गमन और लय व्यवस्था के बीच तुलना और विषमता कर सकते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक में क्षमा के प्रस्ताव को देखते हैं और लय व्यवस्था की पुस्तक में पवित्रता के प्रस्ताव को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर मनुष्य से संपर्क करते हैं, परंतु लय व्यवस्था की पुस्तक में मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख आता है। निर्गमन की पुस्तक में मसीह उद्धार करता है और लय व्यवस्था की पुस्तक में वह शुद्ध करने वाला है। निर्गमन में मनुष्य का अपराध प्रमुख है और लय व्यवस्था की पुस्तक में अपवित्रता प्रमुख है। निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर पर्वत में होकर बातें करते हैं और लय व्यवस्था में वह तंबू में से बातें करते हैं। निर्गमन में मनुष्य को परमेश्वर के निकट रहने के लिए बनाया गया और लय व्यवस्था में मनुष्य को परमेश्वर के निकट रखा गया। मित्रों, अब हम पुस्तक के विषय या रूपरेखा को देखेंगे जो इस प्रकार है। प्रथम भाग में हम पाते हैं पांच बलिदान और उनकी व्यवस्था, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे ए में सुगंधदायक सुगंध वाला बलिदान मसीह का व्यक्तित्व, और इसके अंतर्गत हम पहला देखते हैं होम बलि या अग्नि बलि मसीह हमारे बदले में, अध्याय एक और दूसरा है अन्न बलि मसीह के प्रेम की सुंदरता अध्याय दो और तीसरा है मेल बलि मसीह हमारा शांति अध्याय तीन। और हम बी में देखते हैं सुगंध रहित सुगंध वाला बलिदान क्रूस पर मसीह के कार्य। इसके अंतर्गत पहला हम देखते हैं पाप बलि, पाप एक स्वभाव के जैसा होना अध्याय चार में। दूसरा दोष बलि, पाप एक कार्य के जैसे अध्याय पांच में। अब हम आते हैं सी बलि की विधि, और इसके अंतर्गत हम देखते हैं पहला याजक, सभी विश्वासी याजक हैं, और इसमें हम देखते हैं पहला याजकों का संस्कार अध्याय आठ, दूसरा है याजकों का सेवा कार्य अध्याय नौ, और तीसरा है याजकों पर रोक अबीहू और नादाब की मृत्यु अध्याय दस। अब इसके अंतर्गत हम तीसरी बात को जो मुख्य है उसे देखते हैं, प्रतिदिन के जीवन में पवित्रता, परमेश्वर अपने संतानों के आचरण का ध्यान रखते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ए में परमेश्वर के लोगों का भोजन अध्याय 11, बी परमेश्वर के संतानों के संतान अध्याय 12, सी कोढ़ी का शुद्ध किया जाना अध्याय 13 और 14, डी बहने वाले स्रोत से शुद्धिकरण करना अध्याय 15, ई प्रायश्चित का महान दिन अध्याय 16, एफ बलि का स्थान लोहू का महत्व अध्याय 17, जी जीवन की परिस्थिति में लागू करने की आज्ञा। इसके अंतर्गत पहला हम देखते हैं अनैतिकता का खंडन किया गया सातवीं आज्ञा का विस्तार अध्याय 18 में, दूसरा सामाजिक पाप आज्ञा का उपयोग करना अध्याय 19, तीसरा आज्ञाओं का उल्लंघन करने की सजा अध्याय 20। तब हम आते हैं फिर से एच में याजकों के व्यक्तिगत पवित्रीकरण की विधि अध्याय 21 और 22 में, और तब हम चौथे मुख्य विषय पर आते हैं पवित्र विश्राम दिन अध्याय 23, और पांचवा मुख्य विषय वायदा के भूमि के लिए विधि और भविष्यवाणियां, और इसमें हम देखते हैं ए दीवट रोटी और इष्ट निंदक के लिए मृत्यु की सजा अध्याय 24, बी सातवां वर्ष जुबली का वर्ष और छुड़ाने वाले रिश्तेदारों की विधि अध्याय 25। तब हम आते हैं सी भूमि में आशीष के लिए शर्तें अर्थात स्थितियां एक भविष्यवाणी का इतिहास अध्याय 26, और मुख्य चौथा विषय है मन्नत के लिए समर्पण और उपासना अध्याय 27। मित्रों यहां पर रूपरेखा समाप्त होता है और अब हम अध्याय एक से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम अध्याय एक में सबसे पहले इन विषयों को देखेंगे, विषय है अग्नि बलि या होम बलि। बाइबल में हम इसे होम बलि के रूप में जानते हैं, लेकिन अग्नि बलि भी इसके लिए हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मित्रों मानव की जानकारी में यह सबसे प्राचीन भेंट या बलिदान है। हाबिल, नूह और अब्राहम ने भी यह भेंट चढ़ाई। चूंकि ये सभी भेंट बलि पीतल की वेदी पर चढ़ाई जाती थी, इसलिए पीतल वेदी को भी अग्नि वेदी की संज्ञा दी गई। इस बलिदान के द्वारा ही इसे यह नाम प्राप्त हुआ। इसकी प्राथमिकता और प्रमुखता के कारण ही इसे पांच भेंट बलियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। यह भेंट या बलि प्रभु यीशु ख्रीष्ट अर्थात मसीह की मृत्यु तथा उसके गहन चरित्र का अद्भुत चित्र है। इस भेंट के गुण अर्थ को समझना मनुष्य की समझ से परे है, क्योंकि इसमें मसीह का वह चित्रण जैसा परमेश्वर उसे देखता है इसमें दर्शाया गया है। निसंदेह हम वैसा नहीं देख सकते जैसा वह देखता है। यहाँ वह गुप्त रहस्य छिपा है जिसे केवल पवित्र आत्मा हमें प्रकट कर सकता है। अग्नि बलि या होम बलि हमें मसीह के व्यक्तित्व को उजागर करती है, वह हमारा बदली है। पौलुस प्रेरित इसे इस प्रकार प्रकट करते हैं इफिसियों के पत्र 5 अध्याय उसके 2 पद में लिखते हैं, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मित्रों अब हम इस अध्याय की रूपरेखा को देखेंगे जो इस प्रकार से है, सुखदायक सुगंध की भेंट मसीह का व्यक्तित्व अध्याय 1-3, होम बलि ख्रीष्ट हमारा बदली अध्याय 1, और इसमें हम देखते हैं अ होम बलि के लिए नियम पद 1-4, ब होम बलि की विधि पद 5-18, स होम बलि के कारण पद 17, ड होम बलि का विधान अध्याय 6-8-13, भेंट तथा बलि संबंधी नियम। मित्रों, हम लय व्यवस्था 1 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा ने मिलाप वाले तंबू में से मूसा को बुलाकर उससे कहा। परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से कहा। अब वे बिजली एवं बादलों के गर्जन के बीच सीनै पर्वत की चोटी से बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वह 10 आज्ञाओं को देने के समय किए थे। वे मूसा को यहाँ मिलाप वाले तंबू में मेल मिलाप के साथ बुलाते हैं। प्रभु ने मूसा को पुकारा और उसकी बुलाहट उनके लिए है जो उसकी आवाज सुनेंगे। यही बात महत्वपूर्ण भी है। आज परमेश्वर मनुष्यों को बुला रहे हैं कि उससे मेल मिलाप कर ले। मित्रों, कलीसिया एक बुलाए हुए लोगों की देह है और वे चुने हुए हैं क्योंकि वे बुलाए गए हैं। क्योंकि यहूदी चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 22-24 पद में हम इसे पाते हैं। मित्रों, बुलाए हुए का अर्थ कदापि यह नहीं है कि उन्होंने केवल पुकार सुनी, परंतु सुनने के साथ साथ उन्होंने प्रत्युत्तर भी दिया। अब मैं आपसे भी यही प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने उसकी पुकार को सुनकर उसका प्रत्युत्तर दिया? मित्रों, हम लय व्यवस्था की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि कोई मनुष्य का अर्थ है जो कोई भी व्यक्ति आए। मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है, इसलिए आज हम यहीं पर रुक जाते हैं और आगे के अध्ययन में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक आप इस वचन पर अवश्य चिंतन करें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरी